जाबिर बेटे, मैं प्याज तल रही थी और चूल्हा भी बंद नहीं किया है।
सुबह तक तुम्हारी शक्ल ही देखते रहे कि अपनी बात भी कहोगे?
बिस्मिल्लाह। बिरादर गिरामी इंस्पेक्टर जाबिर शेरजाद, अस्सलामुअलैकुम। फलां आदमी के फलां नंबर केस में पेश आए मसाइल के मद्देनज़र, मतलब यही लोग असद हैं और सख्त और पेचीदा केसेस को हल करने में आपकी अहलियत और तजर्बे और जज्बे हुब्बुल वतनी और फ़र्ज शनासी और एहसास ज़िम्मेदारी के मद्देनज़र, एक बार फिर ये केस आपके ही सुपुर्द किया जाता है। याद रहे कि इस हुक्म की खिलाफ वर्जी अपने सीनियर के अवामिर से हुक्म अदूली मानी जाएगी और दफ्तरी उसूल के मुताबिक वक्त से पहले रिटायरमेंट की दरख्वास्त के तौर पर मानी जाएगी। हेड ऑफ द CID, ऑफिस नंबर 308, मेजर सैयद हशमतुल्लाह तुराब निजात।
ये लीजिए अम्मी जान, ये रहा शाहनामे का दी एंड। पहले इन्होंने इस्तीफा दिया ताकि हम पे नजर रख सकें और अब इन्होंने नौकरी पर वापसी का रास्ता ढूंढ निकाला है।
जरा रुको, तो रुक जाओ। क्या ये सच कह रही है जाबिर? तुम धोखा दे रहे हो?
नहीं।
लो, तो अब मामला साफ हो गया। तुम जाकर अपना रिटायरमेंट ले लोगे, फिर जाकर अपने मामू की दुकान पर कपड़े बेचने का काम करोगे। बस तुम भी जाकर देखो चूल्हे पर प्याज जल ना जाए, कितनी महंगी प्याज आती है आजकल। चलो मेरे बेटे। अरे चलो।
हाजिया साहिबा, हमें जब मालूम हुआ कि असद साहब आपकी बात पर अमल करने निकले हैं, तो मालूम हुआ कि इस मामले की कड़ी मनुचहर से मिलती है। जाके मनुचहर से बात की और इंतज़ार किया कि मनुचहर हमें असद साहब तक पहुंचाए और हम असद के ज़रिए इमाद पंजाबरी को गिरफ्तार कर सकें। और इमाद की कड़ी एक बड़े गैंग से मिलती है। जब मैंने इस केस से इस्तीफ़ा दिया तो मनुचहर हमारे अफराद के हाथों से निकल भागा। मेजर साहब भी मुझसे खफा हो गए और दोबारा ये केस मेरे हवाले कर दिया। इस बीच अहम बात यह है कि मनुचहर को असद का ठिकाना मालूम है। सही कहा? और इस वक्त वो उसी के पीछे गया है ना? देखिए आंटी, मुझे यकीन है कि आपको असद का पता मालूम है, तो बेहतर यही होगा कि आप उसके बारे में सारी मालूमात मुझे दे दें। मुझे डर है कि कहीं देर ना हो जाए।
इनकी बातों में ना आइएगा अम्मी जान, ये आपसे बात उगलवाना चाहते हैं ताकि असद को घेर सकें। हमारे असद को मनुचहर जैसे लोगों से निमटना आता है।
मर्जिया साहिबा, मनुचहर के जाहिर पर मत जाइए, वो उससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है और इतना ख़तरनाक है कुछ भी कर सकता है। कम अज़ कम मेरी इस बात पर यकीन ज़रूर कर लें।
जाबिर सच कह रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं बताऊँगी।
क्यों?
फजल अली मरहूम कहा करते थे कि हर खैर के पीछे एक शर होता है। जो बात मैं नहीं बताना चाहती हूँ, वो बात बिना फितने के नहीं थी। मनुचहरी असद का दर्दे सर है। अगर असद के लिए कुछ किया भी जा सकता है तो हम और तुम नहीं कर सकते, उसे खुद ही निमटना होगा।
माफ कीजिएगा, मैं आपकी इस बात से ज़रा भी मुत्तफिक नहीं हूँ। पुलिस का तो काम ही मसाइल को निमटाना होता है।
तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये मसला कुछ अलग है।
वो कैसे?
तुम जानते हो, असद का ये मसला मंतकी उसूल से ज़रा अलग है, होना भी चाहिए। लेकिन बेटे जाबिर, इतना जान लो कि अगर असद के मसले का हल मुमकिन है तो सिर्फ और सिर्फ उसी के जरिए होगा।
शाबाश, क्या पते की बात की है। इसका मतलब समझते हो तुम? यानी तो अगर तुम इनके बेटे के केस को दोबारा अपने हाथ में लेना चाहो तो ये बिल्कुल बेफायदा बात होगी, उल्टा इसका नुकसान ही होगा, जिसको हम और तुम अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि कीड़े लगे दांत को निकालो और अपनी जान छुड़ाओ।
आंटी जिस तरह से अपने मामले को समझती हैं इसी तरह अमल कर रही हैं, और मुझे भी अपने हिसाब से चलना है। रही बात उस नुकसान की जिसकी तरफ आपने इशारा किया, तो उस बारे में मुझे अभी बात करनी है।
कैसी बात?
अगर पता चले कि इस केस को दोबारा हाथ में लेने में मेरा कोई नुकसान नहीं है तो काम पर वापस चला जाऊंगा, वरना रिटायरमेंट ले लूंगा।
तो तुम्हें पता कैसे चलेगा इस बारे में?
पूछ लूंगा मैं।
अभी इन बातों का बिल्कुल मुनासिब वक्त नहीं है। हाँ, मैं ठीक कह रही हूँ ना बड़ी बहन?
सही वक्त यही है, शायद अब भी देर हो चुकी हो। मैं या तो कल सुबह अपने काम पर वापस चला जाऊंगा या मैं हमेशा के लिए इस जॉब को खैरबाद कह दूंगा।
क्या आप इस तरह बात कर सकते हैं कि मुझे और मेरी अम्मी जान को भी समझ आ सके?
आंटी समझ रही हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ सिर्फ आप बेखबर हैं कि मामला क्या है। अलबत्ता अपनी और आपकी वालदा की इजाज़त से इस वक्त मैं आपको सब कुछ बताता हूँ।
अच्छा, अब जाने भी दो। मेरे कहने का मतलब ये है,
मैं ऐसे मुनासिब वक्त में ये बातें करना चाहता था जब आपको मेरी ज़्यादा शिनाख्त हासिल हो चुकी हो, लेकिन अब कोई चारा नहीं रह गया है। मेरे बॉस ने सिर्फ आज रात तक का टाइम दिया कि मैं अपनी जॉब के सिलसिले में फैसला कर लूं। वो जॉब जिससे मुझे मोहब्बत है, और इसी वजह से आज तक कोई मुजरिम मेरे हाथ से फरार नहीं हो सका। आंटी, आशिकी ऐसी चीज़ नहीं कि जिसको छोड़ा जा सके। कभी कभी इंसान को फ़र्ज़ और इश्क में से किसी एक का इंतखाब करना होता है। ऐसे में अपने लिए मुख्तलिफ दलाइल घड़ने के फ़र्ज़ को इश्क पर क़ुरबान कर देते हैं, लेकिन कभी कभी इंसान इश्क और फ़र्ज़ के बीच में एक रास्ते में फंस जाता है। ऐसे में मामला और भी दुश्वार हो जाता है। इस वक्त मेरी यही कैफियत है, नहीं जानता कि क्या करूं। मैं दो अहम चीज़ों के दरमियान फंस गया हूं, लेकिन मेरे ख्याल में इसका हल निकल सकता है। मर्ज़िया साहिबा, मेरे लिए आप बहुत अहम हैं, इतनी अहम है कि अगर आप इस बात पर राजी ना हो कि मैं असद का केस अपने हाथ में लूं, तो मैं आज रात ही अपनी जॉब को छोड़कर मामू की दुकान पर बैठ जाऊंगा। अलबत्ता इतना ढीठ नहीं हूं कि इसी वक्त आपसे जवाब मांगूं इस बात का। आपकी तरफ से मामूली सी उम्मीदवारी भी मेरे लिए बहुत है, और मैं सारी उम्र आपके मुस्बत जवाब का इंतज़ार कर सकता हूँ। अगर आपका जवाब ना में हो तो मैं ये समझूंगा कि मेरी किस्मत थी कि मैं सारी उम्र अपनी जॉब के साथ तन्हा रहूं। नाराज़ भी नहीं होऊंगा मैं, अलबत्ता ये झूठ होगा कि मैं कहूं कि मेरा दिल नहीं टूटेगा। बहरहाल मोहब्बत न एक तरफा चीज़ है और ना ही बातों और मिन्नत समाजत से हासिल होने वाली चीज़। माफ़ कीजिएगा आंटी, मेरी बातों को गुस्ताखी मत समझिएगा। मैं और अम्मी चाहती थी कि ये बात किसी मुनासिब मौके पर और रस्म के मुताबिक कही जाए, लेकिन ऐसा हो ये मुमकिन न था। बहरहाल मैं आपसे माजरत ख्वाह हूँ।
ऐसी बात ना कहना कि पछताने के बाद उसकी तलाफी ना कर सको।
आपकी प्यास जल गई बड़ी बहन। बिछा लो, मेरी कमर में दर्द है।
चाय बनाने की जरूरत नहीं है,
इतनी जल्दी तुम्हें नींद नहीं आने वाली।
मैं बिस्तर पर लेटते ही सो जाऊंगी।
मुझे नहीं लगता।
क्या मतलब?
देखो मर्ज़िया, जाबिर इतना अच्छा लड़का है कि इतनी आसानी से उसे ठुकरा नहीं सकती हो। इस वक्त वो सहन में बैठा तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहा है। नहीं पता, शायद मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी यही करती। लेकिन इंसाफ तो ये है कि हमें खुद को उसकी जगह रख कर देखना होगा। अगर हम होते तो क्या करते? एक इंसान को प्यार हो गया है, उसका दिल किसी और का असीर हो गया है, वक्त भी कम रह गया है, फिर वो क्या करे?
यानी आप वाकई राजी हैं कि आपकी बेटी इस जैसे आदमी की बीवी बने? आपके लिए कोई मसला नहीं है कि आपका दामाद आपकी बेटी को पकड़कर जेल में डाल दे, वो भी असद जैसे बेगुनाह को, जो किसी भी सूरत में इसका मुस्तहक नहीं है कि अपनी जवानी के 10 साल जेल में जाया करे? कहीं आप इसीलिए तो यहाँ ठहरने के लिए इसरार नहीं कर रही थी?
देखो मेरी बच्ची, मुझे इस रिश्ते पर कोई इसरार नहीं है। मेरे बेटे असद के बकौल जब तक मोहब्बत ना हो तब तक किसी को आपस में नहीं जोड़ा जा सकता। अब ये तुम पर है, बैठकर सोचो कि तुम उसे चाहती हो या नहीं। अगर असद को जाबिर के जरिए ही जेल जाना है तो ये उसका मुकद्दर है। अगर उसके किस्मत में है कि वो मंजिल तक पहुँचे तो वो पहुँचेगा। अब रही बात मनुचेयर की, जो कि एक फितना है, तो अगर खुदा ने चाहा तो वो कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें सोना हो या ना सोना हो, ये लाइट बंद कर दो, ये फजूल खर्ची है। अरे मेरे खुदा,
सोई नहीं?
क्या तुम सच कह रहे हो कि अगर उसने मना कर दे तो तुम कभी शादी नहीं करोगे?
जी
जी साहब, इस इजाजत नामे की तारीफ एक्सपायर हो चुकी है, गैर कानूनी है, जाइए आप।
सिर्फ एक दिन देर हो चुकी है, आप आगे गाड़ी खड़े हो, कानूनी नहीं है, लाइन जाइए,
जाइए आप पीछे जाइए।
ठीक है, जानता हूँ भाई, जरा मुझे पूछ तो लेने दो।
मेरा हो गया, मैं जाऊँ यहाँ से? जनाब बताइए ना।
बेटा
जरा सुनो, इसको भेज
बेटा,
जरा देखो तो इसका क्या है।
जरा सुनो,
चाचा जान,
तुम असद को पहचानते हो? असद सालिक को?
नहीं चाचा जान, अब जरा इस तरफ खड़े हो जाए।
मैं उसका बाप हूँ, फजले अली।
मेरे पास शिनाख्ती कार्ड है, तुम चाहो तो देख सकते हो।
चाचा जान
कहाँ पर है?
आप देख रहे हैं कि मैं फारिग नहीं हूँ, आप इस कमरे में तशरीफ ले जाएं, फारिग होने के बाद आके आपका काम कर दूंगा।
ये
प्लीज जाइए।
बेटा
क्या हुआ, वापस क्यों आए?
मुझसे सब्र नहीं हो रहा है।
अरे भाई अभी गए नहीं हो और कह रहे हो कि सब्र नहीं हो रहा है, देख रहे हो मेरे सर पे कितना काम है।
फैला हुआ काम कहाँ और मेरे दिल की बेसब्री कहाँ।
क्या है,
पढ़ लो समझ जाओगे।
कहा ना कमरे में जाकर बैठ जाओ, फारिग होकर देख लूंगा बाबा।
मैं कसम देता हूँ पढ़ लो।
नामुमकिन चाचा जान, जिसके साथ आए हैं उन्हीं के साथ चले जाएं।
कहाँ जाऊं, 3 महीने हो गए हैं, मुझे इसकी कोई खबर नहीं है।
क्या सिर्फ आपका बेटा जंग में लापता हुआ है? इतने सारे लापता अफराद हैं जिनमें से एक मेरा भाई भी है। आप 3 महीने से अपने बेटे से बेखबर हैं, मैं 2 साल से।
तो तुम बताओ मैं क्या करूँ?
वही काम जो मैं और मेरे वालिद और दूसरे लोग कर रहे हैं।
खुदा पर तवक्कुल, अगर सब अपने बेटे को ढूंढने के लिए महाजे जंग पर आ जाए तो क्या होगा? फिर यहाँ तेल झरने की जगह नहीं होगी।
देखो बेटा, ये बातें मैंने बहुत सुनी हैं। तेहरान में भी तुम्हारे हेड ऑफिसर यही कहते थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने मेरी दरख्वास्त पर मोहर लगा दी। ये देखो कितनी मोहर और दस्तखत हैं इस पर।
तेहरान को छोड़ो, आजकल तेहरान से 100-100 ऐसे लेटर हमारे पास पहुँच रहे हैं।
असली जिम्मेदारी मेरी और महाजे जंग के ऑफिसर्स की है।
देखो तो कैसी लड़ाई सख्त हो गई है,
बासियों ने हल्ला बोल दिया है,
अफराद मारे जा रहे हैं, हम अकब नशीनी कर रहे हैं, ऐसे में आपका जाना दुरुस्त नहीं है।
फ्रंट लाइन पर नहीं जाना चाहता हूँ। इस दरख्वास्त के मुताबिक मुझे तो सिर्फ हेडक्वार्टर तक जाकर अपने बेटे को ढूंढना है।
हाजी साहब, 1 मीटर आगे जाना भी मुहाल है, खुदा की कसम पैगंबर की कसम नहीं हो सकता। ये लेटर मुझे दे दे, आप जाइए चाचा जान।
जाइए चाचा जान जाइए, इस पर तो मुहर भी नहीं है, जाइए। अरे भाई इस पर तो मुहर ही नहीं है, जाइए।
अरे मुसलमानों सुनो, मुझे अपना बेटा चाहिए, मुझे अपना लख्त जिगर चाहिए। अगर वो मारा गया है तो मुझे बता दो, अगर वो लापता है तो भी मुझे बता दो, और अगर जिंदा है तो मुझे देखने दो, मुझे अपना बेटा चाहिए। ऐसा तो शिब्र ने भी इमाम हुसैन के साथ नहीं किया था। मुझे अपना बेटा चाहिए। मैं तुमसे क्या चाहता हूँ, सिर्फ अपना बेटा चाहता हूँ, अपने जिगर का टुकड़ा चाहता हूँ। अच्छा चाहिए, अच्छा चाहिए, अच्छा चाहिए, अच्छा चाहिए, अच्छा चाहिए मुझको। मुझे अपने जिगर का टुकड़ा चाहिए। असद, असद, ये कितने जालिम लोग हैं, ये मुझे अपने बच्चे से मिलने नहीं देना चाहते हैं। मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा असद, तुझ पे कुर्बान जाऊं मैं। मैंने कुछ और मांगा क्या? मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ, उसे देखना चाहता हूँ। मैं और तो कुछ नहीं मांग रहा हूँ।
सुबह खैर।
सलाम अलैकुम भाई ताबेदार।
फल्ला साहब, फल्ला साहब, फल्ला साहब, दुश्मनों ने 11-13 महज पर हमला कर दिया है। मोहसिन खरी ने वायरलेस पर कहा है कि जितने भी फौजी हैं यहाँ पर भेज दे, हालत बहुत खराब है।
या खुदा, हमारे पास तो जितने अफराद थे उनको कल भेज दिया, अब तो सिर्फ 70-80 अफराद बचे होंगे जिनमें से आधों ने अभी ट्रेनिंग भी नहीं ली।
अब मैं क्या बताऊँ,
मेरी भी समझ नहीं आ। जाओ जितने अफराद बचे हैं उनको जुटा दो, महज पर उन्हीं को भेज देते।
ठीक है जनाब।
अच्छा, बेवकूफी ना करो सद, अभी अभी हमें 13-11 की लाइन पर भेजेंगे।
11-13 कहाँ पर है?
मुझे क्या मालूम, एक जगह है जहाँ इराकी हमारे सिपाहियों को मार रहे हैं।
अच्छा,
फिर कह रहे हो अच्छा, हमें कोई चाल चलनी होगी ताकि ये लोग हमें यहाँ छोड़ जाए। उठो,
हम दो अनाड़ियों से इनको क्या काम है।
कम अकल इंसान, हमारा शुमार अनाड़ियों में नहीं होता है। ये तुम ही कमबख्त थे जो मशीन गन पर बैठकर गोलियां चला रहे थे। इस वक्त इनके पास सिपाहियों की कमी है, जो यहाँ मौजूद होगा उसको 13-11 लाइन पर भेज देंगे।
हमाद में तेहरान वापस नहीं जाऊंगा। कल जब इन्होंने पुलिस के हवाले और सजा देने की जगह हमें प्लग दी है, तो मैंने फैसला कर लिया कि यहाँ रहूंगा और खजाने को ढूंढने के लिए जाऊंगा।
मुझे इस वक्त सिगरेट की तलब लग रही है।
खाना होगा या पीना होगा?
तंबाकू, मुझे तंबाकू चाहिए।
वो किस लिए?
करीम कुरानी जंग पे जाने से बचने के लिए रोज एक पैकेट तंबाकू खाता था। खाओगे तो दिल धक धक करने लगेगा और रंग हल्दी की तरह जर्द हो जाएगा। ऐसे हो जाओगे कि लोग समझेंगे कि बस एक ही दो घंटे के मेहमान हो और चल बसोगे।
सच कह रहे हो? क्या प्लानिंग की है करीम ने?
उठो उठो, जाकर सिगरेट ढूंढो। उठो,
इतना सवेरे सवेरे, अभी तो कोई दुकान भी नहीं खुली होगी।
असद, कम अखली मत दिखाओ, ये जो तुम्हारे दिमाग में मानवीय ख्याल आते वो फाड़ देंगे। उठो।
अगरचे मेरे लिए अकेले खजाने तक जाना सख्त है, लेकिन अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं रहने पर मजबूर नहीं करूंगा।
صبح بخیر۔ میرا ساتھی مجھے لینے آیا ہے، میں یہ جاننا چاہتا تھا
میرا کہ جواب نامے ہے۔
کیوں؟
ہم ایک دوسرے کے قابل نہیں ہیں۔
اگر آپ کا مسئلہ میری جاب ہے تو میں
جابر صاحب، مجھے یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ میرا بھائی آپ کے ہاتھ لگے۔ آپ کا رشتہ مانگنے کا طریقہ بھی مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ لیکن اصلی مشکل یہ ہے کہ میں اور آپ ایک دوسرے سے بالکل ہی مختلف ہیں، ہم ایک جیسے نہیں ہیں۔
تو کیا ہر کسی کو شادی کے لیے اپنے جیسا ڈھونڈنا پڑے گا؟ آخر انسانوں میں فرق ہوتا ہے۔
مجھے پتا ہے کہ دو لوگ ایک جیسے بالکل بھی نہیں ہو سکتے، لیکن اختلاف اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ دونوں ایک ساتھ رہ ہی نہ سکیں۔
مثلا ہم دونوں میں کس چیز کا اختلاف ہے؟
کم بھی تو نہیں ہے۔
کیا کم نہیں ہے؟ صحیح جواب ہے، کوئی مثال نہیں دیں گی؟
جابر صاحب، مجھ سے ایسی باتیں نہ کریں کہ جیسے میں آپ سے جان چھڑانا چاہتی ہوں۔ میں نے اس مسئلے پہ پوری رات غور کیا ہے، اگر کوئی امید ہوتی تو میں نہ نہیں کرتی۔
کم از کم اتنا تو بتا دیں کہ مجھ میں کیا کمی ہے۔
میں آپ میں کمیاں اور عیب نہیں ڈھونڈنا چاہتی۔ اگر عیب ہیں تو مجھ میں آپ سے زیادہ ہی پائے جاتے ہوں گے۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم شادی بھی کر لیں تو ایک دوسرے کو خوش نہیں رکھ سکیں گے۔
خوش بختی تب آتی ہے جب آپس میں محبت ہو۔ اگر درمیان میں عشق و محبت ہو تو اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ کون کیسا ہے، سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ قسم سے سچ کہہ رہا ہوں مرضیہ صاحبہ۔
یہاں تک اگر یہ بھی ہو جو آپ کہہ رہے ہیں، پھر بھی ہم ایک دوسرے کے قابل نہیں ہیں۔ جابر صاحب، میں یہ نہیں کہنا چاہتی کہ آپ برے آدمی ہیں۔ میں نے آپ کے بارے میں جتنا بھی سوچا، اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں اور اس عرصے میں ہماری بہت مدد بھی کر چکے ہیں۔ اگر آپ نہ ہوتے تو ہمیں بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو آپ نے ہماری خاطر اسد کے کیس سے استعفیٰ دیا، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ لیکن جس محبت کی بات آپ کر رہے ہیں وہ بھی تو ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟
سچ؟
کیا سچ؟
یعنی واقعی میں کوئی محبت نہیں ہے؟
چلتی ہوں۔
उसने क्या कहा?
उसने ना कहा। किस्मत के साथ कौन लड़ सका है? स्टार्ट करो, चलते हैं।
कहाँ चले?
सीधे चलो।
सलाम अलैकुम भाई। कैसे हो भाई?
तुम्हारा शुक्रिया भाई।
एक सिगरेट है तुम्हारे पास, मुझे दोगे?
क्या मामूली चीज के लिए पूछने की जरूरत है?
माफ करना भाई, लत का कोई इलाज तो होता नहीं ना?
लो एक दे देता हूँ।
शाबाश, बहुत बहुत शुक्रिया।
लेकिन याद रखना, पीना बुरी लत है, मत पियो।
मुतमईन रहो, याद रखूंगा। कैसे हो भाई?
कहते हैं कि कार्रवाई शुरू हो गई है।
ठीक कह रहे हो, हुआ ही होगा।
कहाँ?
मेरे भाई, वहाँ से जंग बहुत बड़ा, ये तो सिर्फ एक कोना ही है।
नहीं, दूसरी जगह कार्रवाई हुई है, वहाँ इराकी फौजियों को तबाह बर्बाद कर दिया गया है।
कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। तुम्हारे पास माचिस होगी? शाबाश। देखो भाई, तुम मेरे बड़े भाई हो, इसमें बेअदबी मत समझना, लेकिन खुलेआम सिगरेट पीने से दूसरों पे असर पड़ता है।
तुम्हारे पास बस एक ही सिगरेट है?
क्या
क्या तुम अपनी जेब में सिगरेट ढूंढ रहे हो?
नहीं, कैसे?
मैंने सोचा तुम कुछ और ही कहना चाहते हो।
अगर तुम्हारे पास है तो लेने से इनकार नहीं करूंगा। है क्या? बाकायदा पीते हो या शौकिया? भाई,
सलाम मेरे बेटे।
वालेकुम सलाम हाजी।
क्या मैं बेशक हेडक्वार्टर के लिए सही आया हूँ?
नहीं, गलत आया हूँ, यहाँ शहर की भीड़ भाड़ नहीं है।
मैं अपने बेटे की तलाश में आया हूँ, असद सालिक नाम है। तीन महीने से उसकी कोई खबर नहीं है। क्या तुम उसे पहचानते हो?
असद के बाबा, सच कह रहे हैं?
ये रहे शिनाख्त के कागजात। मैं फजले अली हूं, असद सालिक का बाप। असद को कुछ हुआ है क्या?
नहीं जनाब, नहीं जानता मैं।
सुनो बेटे, अगर मेरे बेटे असद को कुछ हुआ है तो तुम मुझे बता दो, खुदा के लिए बता दो।
मुझे नहीं मालूम जनाब, मैं नहीं जानता कि असद है कौन।
क्या वो शहीद हो गया या उसे गिरफ्तार कर लिया गया?
हकीकत ये है हाजी साहब, खुदा आपको सब्र दे, आपका बेटा असद 2 महीने पहले अकब नशीनी के दौरान दुश्मन फौज के जरिए गिरफ्तार कर लिया गया। अलबत्ता परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो ठीक है, हम जानते हैं।
2 महीने पहले?
जी हाँ, बिल्कुल ठीक 2 महीने पहले। खुदा उसकी हिफाजत फरमाए।
मुझे ज्यादा याद करता था।
बहुत ज्यादा। वो कहता था कि मुझे अपने बाबा की बहुत ज्यादा याद आ रही है।
हाँ ठीक है, जाओ।
क्या हुआ अमाद, तुम मैदान में हाजिर क्यों नहीं हुए?
ये जनाब अपने बेटे को ढूंढ रहे थे, मैं इनसे कह रहा था कि आपसे आकर मिले।
तो यहाँ तक कैसे आए ये?
इस बारे में ये खुद आपको बता देंगे।
फिलहाल मैं बहुत मसरूफ हूँ, आप जाके मोर्चे पर इंतजार करें, मैं फारिग होकर आता हूँ। और तुम भी फौरन चलो।
ठीक है जनाब।
असद कहाँ है? सो तो नहीं रहा अभी तक?
नहीं जनाब, वो तैयार हो रहा था। फल्ला साहब आप जाइए, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। महाज पर हर दूसरा आदमी असद है, लेकिन कोई भी आपके असद जैसा नहीं है। चचा जान, आप वो मोर्चा देख रहे हैं ना, वो फल्ला साहब का ऑफिस है। आप वहां जाकर आराम कीजिए, फिर हम लोग जाकर आपके असद को ढूंढ कर लाते हैं। जाइए जाइए, खुदा हाफिज। वही जो तुमने सुना, तुम्हारे वालिद कब्र से उठकर आ गए और तुम्हें ढूंढ रहे हैं।
अहमद अपनी हदों में रहो, मैं ऐसी बातों का बुरा मानता हूँ।
असद बेवकूफ कहीं के, जब एक आदमी लेटर लेकर आया है और कह रहा है कि वो असद का बाप है, तो इसका मतलब वो असद का बाप नहीं, वो जासूस है, जाबिर का आदमी है।
ये कैसे हो सकता है कि खुफिया पुलिस वाले जाबिर मेरे पीछे आए और तुम्हें न पहचाने? और फिर जाबिर को कैसे पता चला कि हम यहाँ पर हैं?
मेरे भाई, मैं नहीं जानता, मुझसे क्यों पूछ रहे? मुझे नहीं पता वो कौन है, बस मैं इतना जानता हूँ कि यहाँ से निकलो किसी भी तरह से बस।
फिर तो भागना होगा।
हाँ, लेकिन वो कैसे?
हाँ, पर कैसे? कि अफराद के साथ हम भी 16-17 की जानिब जाएं।
16-17?
हाँ वही ना।
हम लोग फ्रंट लाइन पे जाएं, वो भी ऐसे वक्त जब हमला हो रहा है।
मेरे भाई, सिर्फ यही रास्ता बचता है। जब तक ये जाली बाप मोर्चे में बैठा है, हम चल के बाकी अफराद के साथ बस में बैठ जाते हैं। फिर रास्ते में तुम अपना दिमाग लड़ाकर एक बेअब से प्लान बनाना, उसके बाद मौका पाकर हम भाग जाएंगे, समझे?
जल्दी करो, तैयार हो जाओ, जब तक ये साहब मसरूफ है फूट लो।
شبیه تو نیست، کنار تو درگیر آرامشم، همین از تمام جهان کافیه، همین که کنارت نفس میکشم. برام هیچ حسی شبیه تو نیست، تو پایان هر جستجوی منی، تماشای تو عین آرامشه، تو زیباترین آرزوی منی. منو از این عذاب رها نمی کنی، کنارمی به من نگاه نمی کنی، تمام قلب تو به من نمی رسه،